किसी चीज से ना पहचान पाओ तो कषाय से युक्त है तो जीव जरूर है, उद्गल तो कषाय से युक्त होता नहीं है, ऐसा विचार करके खोज लेना जीव को, खोजने के ये तरीके हैं। फिर उसके बाद ज्ञान के माध्यम से भी, ज्ञान भी मार्ग ना है, इससे भी अपन खोज लेते हैं। तो तत्वार्थ के बोध होने का नाम ज्ञान कहलाता है, और मिथ्यार्थ के उदय यहाँ तो मोक्ष मार्ग है, इसलिए इसी तरह ज्ञान की परिभाषा बनाएंगे कि तत्वार्थ के बोध होने का नाम तो ज्ञान है, और मिथ्यार्थ के उदय में होने वाली जो कलुषता है वो अज्ञान है। ऐसी ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा अपन बना के, ज्ञान के पांच भेद अपन में पड़े हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, और मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, सबकी परिभाषाएं अपन लिख चुके हैं। और अज्ञान कितने बोध, अज्ञान तीन प्रकार के बोध, मति अज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान का उल्टा विपरीत विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान ऐसा कह देते हैं उसको। ये तीन अज्ञान है और पांच ज्ञान है, ये इनके भेद हो गए। इसके बाद जो है संयम मार्ग ना आती है, संयम धारण करने वाले जीवों को भी हम पहचाने, वह भी देवी जीव है। अब संयम में पांच बातें बहुत जरूरी है। पहला तो व्रतों का धारण, सब मिला के संयम है, व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, चौथे नंबर तीन दंडों का त्याग और पांचवी इंद्री विजय, ये जिसके पास हैं वो संयमी हैं। ये संयम है पांच प्रकार के। अब इनमें भी जो है विभिन्न भेद हो जाते हैं, इनके भेद सात हैं, मार्ग ना जहां के अपन खोजेंगे। ये सब टेक्निकल वर्ड है भैया, बस एक ही चीज इसमें ऐसी है जो कि लेशा, जिसके बारे में आपको विशेष रूप से बता दूंगा, बाकी सबके लिए तो ऐसा ही समझना पड़ेगा। उकताहट हो रही हो तो बताओ, फिर हो तो नहीं रही। अच्छा, हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, हम पढ़ने वाले लोगों से कह रहे हैं, सबने पढ़ा होगा कॉलेज में, तो वहां पर नया नया सब्जेक्ट लेते हैं, फिर भी हम वैसे बुद्धू से बने और पढ़ते चले जाते हैं, कुछ भी समझ में तो नहीं आता, छह छह महीने तक समझ में नहीं आता। हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते, वहां पर सब अंग्रेजी में ऊपर से निकल चली जाते, मगर फिर भी जाते, रोज जाते और पढ़ते चले जाते। छह महीने के बाद हम उसमें माहिर होना शुरू हो जाते, फिर हम दूसरे और कौन भर्ती होते एडमिशन ले, तो हम कहते अरे बिल्कुल सरल है सारा को, और पहले तो ये सोचते हैं कि कहां से एडमिशन ले लो और कहां से जो विषय ले लो, उन्हें हमसे कभी बनाता ही नहीं। लेकिन वहां जब हम इतना उद्यम करते हैं, हमको बड़ा आश्चर्य होता है। कई बार लोग आकर कहते हैं कि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया और थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा और सरल करो। वहां नहीं कहते किसी टीचर से कि हिंदी में बोलो, लेकिन पढ़ने हो तो पढ़ो ना, कटवा लो ना, होते थे आज उसे पढ़िए हिंदी में, उसे अंग्रेजी में पढ़ना, साइंस पढ़ो इसे है। फिर वहां तो हम सुझा कर लेते हैं, यहां पर थोड़ी कठिन, हम असल में मेहनत नहीं करना चाहते, वो हमें अर्थ करी विद्या, उससे पैसा मिलने वाला है ना, इससे क्या मिलने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे तो पैसा और छिन जाएगा। अगर कर्म सिद्धांत पढ़ लिया तो फिर तो कछु कर भी इच्छा नहीं होगी, जो का करने अपन को, जिस तो है भागन उसको मिलो और संतोषी अपने दो कमा लें और खा लें, आपका टेलीविजन और का कर्म को बंद होते सब चीजें तो और दिक्कत है, तो सब रोज जीते जाते। इसलिए हमें लगता है ये वाली विद्या अच्छी नहीं, इसमें तो कठिन सी लग रही है, कोई कहानी वहानी सुनाओ। आज तो कहानी वहानी सुनाने का तो मूड तो है, अभी बताएं शिक्षा वाले ने। उसके बाद अपन थोड़ा सा पढ़ें संयम, संयम मार्ग ना के सात भेद करे हैं, सामायिक शुद्धि संयत या कि सामायिक संयम, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाध्यात्म। ये चारित्र के भी भेद हैं, इन्हीं के साथ शुद्धि संयत शब्द लगा दिया गया, इन्हीं के साथ संयम शब्द भी, तीनों के अर्थ एक ही हैं। ये इस मार्गना के अंतर्गत, संयम मार्गना के अंतर्गत दो और शामिल करते हैं, एक संयता संयत और एक असंयत। इनमें भी जीव है, क्योंकि असंयत जीव भी है, संयता संयत भी है। अब इनकी सबकी परिभाषाएं समझ लो शॉर्ट में। सामायिक किसे कहते हैं, समता परिणाम। सब हमेशा जब से सामायिक चारित्र स्वीकार करता है, ये साधु कोई होता है सामायिक चारित्र, जब तू स्वीकार करता है तब तो उसने तय कर लिया है कि अब समता भाव रखेंगे सब बातों में। जो चीज साधक के लिए संतोष कहलाती है वही चीज साधु के लिए समता कहलाती है। ये पेंसिल है और अच्छी है या कि बुरी है, इस दोनों में समता रखता है साधु। और अगर बुरी पेंसिल मिली है तो संतोष रखता है श्रावक। साधु को मिली या नहीं मिली दोनों में समता है, लेकिन श्रावक को अगर ऊंची नीची थोड़ी कम ज्यादा मिलती है तो उसमें संतोष रखता है, नहीं मिलेगी तो संतोष नहीं रखेगा। इतना ही फर्क है। नहीं मिलेगा तो साधु तो समता रखेगा लेकिन श्रावक संतोष नहीं कर सकता। हाँ, मिल जाने के बाद ऊंची नीची हो गए तो उसमें संतोष फिर भी करना चाहे तो बन जाए। कितना समता और संतोष का फर्क बताना था, वो भी अपन को जानना चाहिए। कम से कम संतोष तो साधक को रखना ही चाहिए। और साधु के लिए सामायिक चारित्र में क्या होता है, हमेशा के लिए उसने समता परिणाम रखना, पावक से बचाव कर दिया है, पांचों प्रकार के पाप करने का त्याग कर दिया, ये सामायिक चारित्र कहलाता। उसके बाद छेदों पर स्थापना अप्रिया, छेद मतलब होता है टूट फूट हो गई, उपस्थापना मतलब फिर से उसी में स्थित हो जाना। गलतियां करी उनका निवेदन कर लिया, प्रायश्चित दे करके फिर से सामायिक चारित्र में चले गए तो थोड़ी टूट फूट हो गई, राग द्वेष हो गया तो उससे छेद हो गया। छेदों पर स्थापना मतलब जो भी टूट फूट हुई हो उससे पुनः वापिस लौट जाना। जब जिसको वो चारित्र होता, आज तो वर्तमान में सामायिक और छेदों पर स्थापना दोनों प्रकार के चारित्र हैं। एकमात्र 24 घंटे कोई सामायिक में लीन नहीं रह सकता, चॉइस तो होगी, चॉइसलेस अवेयरनेस बहुत कठिन है। चुनाव रहित अप्रमत्तता, मैं चुनाव नहीं करूंगा कि इस पर बैठूं कि इस पर बैठूं कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं, कोई चुनाव नहीं है, जहां है वहीं ऐसा हो नहीं पाना। तब फिर छेदों पर स्थापना नाम का संयम है, छेदों पर स्थापना सुरती संयत है, वह भी संयत है। वह गलती करता है गिर जाता है, उठ करके फिर चलने लगता है। श्रावक और साधु में इतना ही फर्क है, श्रावक गिर करके गिरा रहता है, साधु गिरता है उठ करके फिर आगे बढ़ जाता है। अगर अपन फर्क करना चाहें तो इतना फर्क, गिर करके गिरे ही रहना चाहिए, अब गिरे ही जाए तो पड़े ही रहो, ऐसा नहीं। गलती होती है फिर शुद्ध करके फिर आगे बढ़ता है, इस तरह का चारित्र छेदों पर स्थापना चाहिए। परिहार विचित्र, बड़ा विचित्र प्रकार का चारित्र है। तीन तरह की मान्यताएं इसमें है, 16 वर्ष की उम्र या 22 वर्ष की उम्र या 30 वर्ष की उम्र तक अच्छी तरह से ग्रस्त के सुख को भोग लेने के बाद एक वर्ष प्रथक्व तक देवली भगवान तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में जाकर के प्रत्याख्यान नाम के शास्त्र का विशेष अध्ययन करने वाले के लिए ये परिहार विचित्र नाम का संयम होता है। परिहार का अर्थ है चिंता से बचना। ऐसे मुनि महाराज भी होते जो परिहार विशुद्धि संयम से युक्त होते हैं, वे कितना ही गमन करें उनके द्वारा जीवों का घात नहीं, वे परिहार विशुद्धि संयम से युक्त कहलाते हैं जीव। और उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय, जिसकी कषाएं अब सूक्ष्म रह गई हैं, उक्षम या क्षय को प्राप्त हुई, सूक्ष्म कषाएं अभी विद्यमान है, उसमें स्थित जो जीवों का चारित्र है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। और यथाख्यात जिसमें की जीवों का जो मोह और कषायें हैं वे सब या तो उक्षम को प्राप्त हो गई हैं सर्वथा या क्षय को प्राप्त हो गई हैं, ऐसे जीवों का जो चारित्र है वो यथाख्यात विहार विशुद्धि संयम कहलाता है। और ये पांच प्रकार का विशेष चारित्र हो गया। और संहिता संयत चित्रहिंसा का त्याग और व्यथा था वर्णक कहाँ है, त्रसंता का तो त्याग कर दिया है कि हम त्रस जीवों को नहीं मारेंगे, लेकिन अब एक इंद्री दो इंद्री को बचा नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार जिनका चारित्र है वे संहिता संयत कहलाते हैं, और जिनने हिंसा करने को जरा भी त्याग नहीं करवाए वे सब असंयत की कोटि में आते हैं। देखो नए कर्म बात अलग है लेकिन त्याग कर देना बात है। हम कौन कोई जीव को मारा है, तो नियम ले लो कि हमने मारा, अब वो भी नहीं लगे हम कौन रात से खा तो नहीं खा तो त्याग कर दे रात्रि भोजन को, जो भी नहीं। तो भैया एक तो रनिंग डिपॉजिट होता, बैंक वाले बहुत जानते, रनिंग डिपॉजिट होता, एक FD भी होता, फिक्स भी होता, अच्छा इंटरेस्ट कौन में कम ज्यादा में लग रही है। अगर हम अपने विचारों में संकल्प कर लेते कि ये पैसा हमने रखा और हम अब देख ले हाथ उठाते साल भर तक तो फिक्स, तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। और कहा पता कभी जरूरत पड़ गई है तो खुले खाते में भर लो, जब निकालने के लिए जब निकालने, भले साल भर नहीं निकालो मगर उसका इंटरेस्ट उसका नहीं मिलेगा। बस यही तो संकल्प के साथ है, एक बार संकल्प कर लिया फिर उसकी तरफ मन नहीं जाता। संकल्प पूर्वक जिस चीज का और गुरु की साक्षी पूर्वक किया हो तब और अधिक विशेष होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी साक्षी पूर्वक करना, मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु की साक्षी पूर्वक करोगे तो प्रॉफिट रहेगा। कभी कोई टूट फूट हो जाएगी तो कम से कम आके निवेदन करके शुद्धिकरण के लिए साक्षी ग्रहण करके आगे तो बढ़ सकोगे। और दूसरी बात, गुरु जानते हैं कि ये लेना तुम्हारे योग्य है या नहीं, क्रम क्या है लेने का, ये हम अपने मन से नहीं जानते। और कई लोग अक्रम से त्याग कर देते हैं और इस वजह से फिर वो त्याग से आतुलता उनको बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि हम तो जो कैसे छोड़ा जमा सकते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। तो इसलिए गुरु से निवेदन करके कि मैं सोचता हूँ ऐसा, हम लोग तो यहाँ तक के पूछते हैं आचार्य श्री से कि क्या हम ऐसा कर लेंगे, तो फिर वहां से हाँ ऐसा ना करके ऐसा करना। अभी अभी की तो बात है, ज्यादा दूर काय को, आप लोग उस दिन बड़े परेशान हो गए थे कि तीरथों का होगा, तीनों का होगा, कुछ नहीं भाई, हमें ऐसा ही आदेश मिला था कि अगर करना हो, पूछवाया यही था कि अश्विनी चतुर्दशी को क्या हम उपवास कर सकते हैं, पूछवाना पड़ेगा, तब करने के लिए हमें पूछना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा लेना पड़ेगी, अपने मन से नहीं। तो हाँ कर तो सकते हो, लेकिन अश्विनी चतुर्दशी का विकल्प नहीं रखना, शरीर की स्थिति को विचार करके जिस दिन अच्छा लगे तो अश्विनी को या चतुर्दशी को अगर बनता है तो ठीक, आगे पीछे बनता है तो 15 दिन में 1 या 15 दिन में 2 जितनी इच्छा हो गए वैसा गुरु से पूछ करके तब किया जाएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि टूट फूट हो ही नहीं सकती, वहां पर बैठे होंगे और याद आ जाएगा उनको कि अश्विनी है, शायद किया होगा उपवास चतुर्दशी, शायद किया हो, एक दिन आगे पीछे से याद आ जाएगा कि किया होगा 15 दिन में 1 जरूर अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद मिलता है। ये गुरु के साक्षी पूर्वक किया जाए और संकल्प किया जाए, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, तब तभी होता है कोई संयत। ऐसे नहीं होता कि करते भी नहीं हो और छोड़े भी नहीं हो, ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। संकल्प पूर्वक ही हमें तपस्या ले लेनी चाहिए, तभी हम सही में चलाएंगे। वैसे हम बहुत सारी चीजें छोड़े रहते हैं, वो खा एक दिन हमें 100 सब्जी खा गई, एक दिन हमें 5 खा के कहते हैं, मैंने उसे कहो कि भैया छोड़े हो का आज 5 ही के नियम ले लो, उसका पता संजा तक कोई गंगा और उनसे कटी बना हो तो बड़ी दिक्कत है। हाँ एक जना नहीं ऐसा करो तो अब उनकी ही योजना की नीचे की रहती, अब उनको गाने होते तो गए नहीं होते नहीं, अब होते तो सब सामान उनकी सब मिठाई मिठाई रहती। देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्रती व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारे परिणाम हो जाते हैं अगर हमारा संकल्प नहीं हो गए और ऐसे ही ले लिया हो भगवान की साक्षी। अब कौन से अपन ने कोई से कही तो है नहीं है, ऐसे ले लिया है तो फिर उनका क्या हुआ। अब उस दिन चल हमारी ओपी तो रखी है, शक्कर की तो रखी है, गुरियाई कैसे मंदिर रखी है, अपने गुरियाई की तो रखी है, मनो के अंदर देखो इनने सब दिन मिठाई बरस गई है, तो ये जितनी हम तो ऐसा करत है कि अब ध्यान कल नहीं जा रखी, आज तो हरी की करें वो। अब उनकी योजना हरी की चल रही, जो योजना हरी की अच्छी योजना शक्कर की चल रही। ऐसा नहीं करना सारी तो ऐसी कई बातें हो सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हिंसा का त्याग जिसका नहीं है वो असंयत कहलाता है। ऐसे जीव भी मिलते हैं, इससे हमें पहचान हो जाती है हमें अपने भावों की कि देखो हमने भी ऐसा जीवन बिताया होगा, कोई खोजता होगा जीवों को तो हमें हम भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि असंयत जीव है, निकाल दो एक तरफ कर दो इनको, ये संयत असंयत की कैटेगरी वाले ये संयत है। संयत में भी 5 प्रकार के संयत है, अलग अलग परिहार विशुद्धि यथाख्यात सूक्ष्म संप्राय वाले सब डिवाइजेशन होते ये संयम मार्गन होगी। इसके बाद भाई दर्शन मार्गना है, विषय विषयी के सन्निपात होने से पहले जो सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है उसे दर्शन दे। ये 4 प्रकार का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन सबकी परिभाषाएं अपन पहले जान चुके हैं। इसके बाद आती है लेश्या, लेश्या के लिए अपन आखिरी में रखते हैं, उसके पहले बाकी के और समझ लें, फिर लेश्या के बारे में समझ लेंगे 10-15 मिनट में। भव्यत्व एक मार्गना है, 2 प्रकार के जीव होते हैं, या तो भव्य होंगे या कि अभव्य होंगे, जिनको मोक्ष पर्याय प्रकट होने की योग्यता है वे
सभ्य हैं और जिनको मोक्ष की पर्याय प्रकट होने की योग्यता भी नहीं है वे असभ्य हैं। ये दो तरह से भव्य और अभव्य मार्गना हो गई। जैसे इसको भव्य मार्गना बोलते हैं जिसमें अभव्य जीव भी आता है। सम्यक में सम्यक प्रथम संवेगन कंपा इस लक्षण वाली सम्यक प्रकृति है। इसके हृदय में जो कुछ होता है वो सब सम्यक कहलाता है। इसके भी इन्होंने छह भेद करे हैं। सम्यक दर्शन प्रकृतियों के क्षय सर्वोत्तम उपशम से होता है। इसके तीन प्रकार में क्षय सम्यक दर्शन, उपशम से होने वाला औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय से होने वाला क्षय, उपशम से होने वाला औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम से होने वाला क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। अब इन सबकी परिभाषाएं आपको बताई जा चुकी है भाई, फिर से तो कोई आवश्यक नहीं है। साकादन सम्यक दृष्टि भी आपने कल साकादन गुण स्थान में समझ दिया है। फिर सम्यक मिथ्यात् ये तीसरे गुण स्थान का नाम है, उसमें जो सम्यक है सम्यक मार्गना क्योंकि हम लगा रहे हैं इसलिए सम्यक मिथ्यात् को भी यहाँ पर लिया गया है। और फिर छठवां भेद उसका सम्यक मार्गना का है, मिथ्या दृष्टि, उसे भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। ऐसे छह प्रकार से सम्यक मार्गना के अंतर्गत हम जीवों को खोज करते हैं। उसके बाद संगी मार्गना है, शिक्षा और उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति वाला जो मन है वो जिसके पास विद्यमान है वो संगी जीव कहलाता है और जिसके पास ये मन नहीं है वो असंगी कहलाते हैं। तो ऐसा डिवाइडेशन कर लेते कि संगी और असंगी, लेकिन ध्यान रखना पंचेंद्रीय में विशेष रूप से संगी असंगी का भेद होता है, इसलिए संगी पंचेंद्रीय असंगी पंचेंद्रीय इस तरह से। और वैसे इसके पहले वाले जो इंद्रिय तक के तो सब असंगी है, इसमें कोई बात ही नहीं। और आहार 14वें नंबर पर है, आहार मार्गना, आहार और अनाहार, आहारक बोलते हैं वैसे इसके लिए, आहार मार्गना है, आहारक मार्गना भी इसको कह सकते हैं। आहारक माने जीव प्रतिक्षण नो कर्मों का आहार तो करता ही रहता है, उस अपेक्षा से सब जीव आहारक हैं। बस थोड़े से जीव हैं जो कि नो कर्म से आहार नहीं करते हैं, वे सब अनाहारक हैं। जैसे विक्रय गति में जब जीव नए शरीर को धारण करने के लिए जाता है और एक समय से अधिक की होती विग्रह गति, दो तीन समय की होती विग्रह गति, एक समय की तो रुझु गति होती, उसमें तो अनाहारक दशा बनती नहीं है, हमेशा ग्रहण करता रहता है नो कर्म को, शरीर के बनाने योग्य वर्गनाओं को ग्रहण करता रहता हमेशा। औदारिक शरीर को बनाना है तो औदारिक शरीर के योग्य वर्गनाएं ग्रहण करने लगता, यहाँ से मर करके और अगले स्थान पर जाना है औदारिक शरीर बनाना है तो बीच में रुझु गति से जाएगा तो एक समय लगेगा, एक समय में वहां पहुंच जाएगा, अगले समय फिर आहारक हो जाएगा। इसलिए सब जीव आहारक हैं, विग्रह गति के जीव अनाहारक हैं, या कि प्रतर और लोक पूरण समुद्घात जब केवली भगवान करते हैं उस समय भी अनाहारक दशा उनकी होती है। सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान की भी अनाहारक दशा होती है। बाकी सब जीव यहाँ इस संसार में आहारक ही हैं। अब हमें एक और शेष बची जो कि लेस्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम अपन समझ लें, क्योंकि लेस्या के माध्यम से कि हमारे लिए आयु का बंध इत्यादि सभी प्रक्रियाएं होती हैं। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्य। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, मन वचन काय की कषाय से युक्त जो प्रवृत्ति होती है वो उसका नाम लेस्य। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं और सागर बिल्कुल अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है, उसी तरह से हमारे मन में प्रतिक्षण हमारा आत्मा शांत परिणाम से युक्त नहीं रह पाता, उसमें कोई ना कोई लहर उठती रहती है। बस वो चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे शरीर की हो, कोई ना कोई स्पंदन चलता ही रहता है, तरंगें उठती ही रहती हैं, इसी का नाम लेस्या है। ये लेस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ लेस्या एक अशुभ लेस्या। शुभ लेस्याएं धर्म की लेस्या कहलाती हैं, अशुभ लेस्याएं ये अधर्म की लेस्याएं कहलाती हैं। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्र, इनको आज वर्तमान में कलरेशन और कलर थेरेपी से जोड़ा जा रहा है। ये जैसे बाहर का रंग होता है वैसे ही भीतर का भी एक रंग होता है। साइंस का कहना है कि हमारे चारों तरफ एक ऑरा चलता है, एक आभा मंडल हमारे चारों तरफ होता है, उस आभा मंडल का एक निश्चित रंग भी होता है। वो रंग हमारे चित्त की दृष्टि से बनता है, हमारे भावों से वो रंग बनता है। जैसे अपन लोग कहा करते हैं कि भैया जी पहने तो अच्छे सफेद कपड़ा है, मनो भीतर से भले काले हैं। काले का मतलब क्या होगा? इनके परिणाम देखने से ऐसा लगता है कि ये उतने अच्छे परिणाम वाले नहीं है जितना कि एक व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये पकड़ उस फोटोग्राफ से आ जाती, क्रिलियन फोटोग्राफी की गई और उस क्रिलियन फोटोग्राफी से हमारा जो आभा मंडल है वो भी हमें दिखाई पड़ सकता है। ऐसे तो नेकेड आई से तो दिखाई पड़ने वाला नहीं खुली आंख से किसी के अंदर, लेकिन भगवान का आभा मंडल सबको दिखाई पड़ता है। वो उनके पीछे घूमता रहता जो आभा मंडल है बिल्कुल शुभ, वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान शुभ्रता को प्राप्त हो गए हैं, वे परम विशुद्ध हो गए हैं। हालांकि छह निष्ठाओं से रहित होने वाले व्यक्ति का वहां आभा मंडल कैसा होता होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे अपने आभा मंडल के बारे में सोचें। कभी हमारा आभा मंडल काला होता है और बहुत डिस्टर्ब होता है, कभी वही हमारा आभा मंडल हमारे भावों का रंग कभी कभी नीले रंग का होता, कभी कभी हमारे भावों का रंग कातोद होता है, फिर पीच कलर का येलोश, और फिर उसके बाद नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का, और उसके बाद व्हाइट होता है। ये सब कलरों का बड़ा महत्व है, जिसकी जैसी चित्त वृत्ति होगी उसे वैसा ही रंग पसंद आएगा। ये भी रंगों की थेरेपी है, कलर थेरेपी में ये बात तय हो चुकी है कि जिसकी जैसी चित्त वृत्ति होगी उसे वैसा ही रंग पसंद आएगा। और ये ऐसे नहीं मालूम पड़ता, सहज रूप से जब व्यक्ति जिस रंग को चाहता है तब मालूम पड़ता है। ऐसे तो हम बहुत सारे रंगों को चाहते हैं, लेकिन अधिक से अधिक हम किस रंग को पसंद करते हैं, हमारा झुकाव किस रंग की तरफ है, उससे अगर कोई चाहे तो पता कर सकता है कि इनके चित्त की वृत्ति किस तरह की है। तो ये रंगों का विशेष महत्व है। इसमें अपन थोड़े से शब्दों में समझ लें कि लेशाएं कैसे परिवर्तित होती। वैसे तो एक निश्चित उदाहरण लेशा के लिए दिया जाता है, वो उदाहरण तो है ही, लेकिन हम और थोड़ा सा इसके अतिरिक्त भी कुछ समझने की कोशिश करें। पहला है कृष्ण लेशा। ये कृष्ण लेशा वाले के परिणाम कैसे होते हैं? इसके परिणाम ऐसे होते हैं कि दूसरे का अहित करने के परिणाम, और दूसरे का अहित करने में अगर अपना थोड़ा बहुत अहित होता है तो उसको बर्दाश्त हो जाता है, ये स्वीकार कर लेता है। दूसरे का अहित हो रहा है इसमें आनंद मनाता है वो, भले ही अपना थोड़ा सा अहित हो जाए। वो आपने किस्सा सुना होगा, एक आदमी ने और बड़ी भक्ति करी भगवान की, और कहते कि भगवान आ भी गए, अब आउट है कि नहीं आउट है अपन नहीं कह रहे, मगर उसके लिए तो भगवान आ गए मान लो। और भगवान आ गए, उनने कहा कि वरदान मांगो। चले भगवान सोचने पड़ गए कि कौन सा वरदान मांगे, चले आप ही दे दो, चले देखो तुम जितना मांगोगे उतना कितना मिलेगा है, मगर उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, ये वरदान देते हम तुम्हें। वरदान का सारा रस खत्म हो गया, जितना तुम मांगोगे जब जितना चाहोगे उतना तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मतलब ठीक है, भगवान ने भी अच्छा बुद्धि बनाया है, ठीक है हमें तो वरदान मिला लेकिन भगवान ने भी अच्छा बुद्धि, लेकिन ऐसे बुद्धि बनने वाले वो थे नहीं, उनने अपने वकील लगाए, उन्हें अपने वकीलों से सलाह ली कि अब कैसा करना चाहिए। वकील ने भी कहा कि अंदर बुद्धि हो तुम, थोड़े नहीं समझ में आता, और कान में उनके कुछ समझा दिया। तो शुरू शुरू में तो उनने अपने लिए चला एक मकान मिल जाए, मकान मिल गया, पड़ोसी को दो दो मकान मिल गए, उनने कहा हमारी इतनी संपत्ति हो जाए, देखा पड़ोसी की दुगनी दुगनी हो जाए, चलने वरदान तो ठीक दिया है प्रभु ने, सही दिया। अब उसके बाद उनने मालूम क्या किया, चले हमारे घर के सामने दो कुआं खुद जाए, दो कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर के सामने चार खुद गए, चले हमारी ये कांच टूट जाए। अब आप समझ लो कैसा भाई, दूसरे के घर के सामने चार कुआं खुदवा दे तो फिर मांगी चले हमारी ये टूट जाए, माने वो की ये प्रवृत्ति जिसकी रहती है, ये प्रवृत्ति जिसकी रहती वो कृष्ण लेशा है। समझ लो, दूसरे का अहित करने के लिए तैयार है, अपना थोड़ा बहुत मिट जावे कोई बात, लेकिन जब थोड़ा सा भावों में परिवर्तन आता है तब फिर वो तब फिर क्या करता है, संबंध बनाता है, तो स्वार्थ के संबंध बनाता है, और दूसरे का अहित तो करता है लेकिन अगर अपना अहित होने लगे तो रुक जाता, फिर नहीं करता। ऐसी परिभाषा बना रहा हूं अलग तरीके से। कापोत नील लेशा वाला क्या करेगा, दूसरे का अहित तो करेगा लेकिन वहीं तक करेगा जब तक कि अपन सेफ है, अपने को बचा करके दूसरे के अहित की सोचता है, अपन बचे रहे दूसरा मिट जावे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर अपने अपने ऊपर कुछ आक्षेप आता है तो रुक जाता, फिर अहित नहीं करता। ये है नील लेशा के परिणाम। अपन अपने परिणाम देखते रहे खुद भी कि कैसे कैसे परिणाम होते हैं, और फिर कापोत लेशा क्या है उसके परिणाम कैसे होते हैं कि भैया दूसरे का हमें अहित तो नहीं करना, दूसरे का अहित नहीं करना लेकिन दूसरे की मदद भी नहीं करना, अभी दूसरे की मदद का कोई भाव नहीं है, लेकिन दूसरे के अहित न करने की बात तो उसके मन में आ ही जाती है। ये थोड़ा सा कापोतलेशा है। दूसरे को वस्तु की तरह वह उपभोग भी नहीं करता, दूसरे की चीज का उपयोग नहीं करता, दूसरे को अपने भोगने की चीज नहीं बनाता। व्यक्ति को व्यक्ति समझता है, उसकी तकलीफों को भी जानता है, इसलिए उसको हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता। ये तीन अधर्म की रेशाएं हैं। तीसरी वाली रेशा लगभग अब रास्ते पे आने को है। उसके बाद है पीत लेशा, फिर पद्म लेशा, फिर शुक्ल लेशा। पीत लेशा वाला थोड़ा सा अपना नुकसान भी हो जावे, लेकिन दूसरे का काम बनता होवे तो तैयार हो जाए। ये पीत लेशा के परिणाम है। हमारा थोड़ा कछु बिगड़ भी जाए कोई बात नहीं, भैया जी का बनता है काम तो बन जावे। दूसरे के लिए अब करुणा और दया उसके अंदर पैदा हो गई है। इसमें लिखा उन्होंने कि मृदुता और संतोष उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। अहंकार ये ठीक ऐसा है जैसे कि सूरज पूरे पीक पर पहुंच गया हो, तब उसका रंग कैसा होता है, येलोइश होता है। पूरे ऊंचाई पर पहुंच गया है सूरज, कितना तेज रहता है उसमें, ऐसा ही तेज इस व्यक्ति के अंदर रहता है जिसमें उसका अहंकार धीरे धीरे जलने लगता है। और जब अहंकार जल जाता है, आंच धीमी हो जाती है, तब कौन सा रंग होता है, जैसे सुबह सुबह सूरज उगता हो वैसी लाली जिसके होती है वैसा रंग पद्मलेशा वाले का होता है। अब तो उसके अंदर भद्रता और प्रामाणिकता भी आना शुरू हो जाती, ऐसे लक्षण उसमें बनाए हैं। अब वो किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं करता सबके साथ। अभी तो वो करुणा करता था जो तीन दुखी हैं, अब तो ये सबके ऊपर करुणा करने लगा। बड़ा प्रामाणिक माना जाता है ऐसा व्यक्ति जिसकी पद्मलेशा से युक्त है। और इसके बाद तो शुक्लेशा है, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रखा। एक ही रंग ऐसा है सफेद रंग जो कि अपने पास किसी को नहीं रखता। सुबह किसी ने पूछा था कि काले रंग का कमंडली क्यों रखते हैं, काला रंग कृष्ण लेशा का प्रतीक, हालांकि कृष्ण लेशा का प्रतीक है, लेकिन कमंडली का रंग काला होने के पीछे मकसद एक और है। वो ये कि जितने भी दुनिया की चीजें हैं वो काला रंग सब अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है, अपने में जब्त कर लेता है, बाहर नहीं फेंकता। साधु इसी तरह से सब बुराइयों को अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन उनको बाहर नहीं फेंकता। इस बात का प्रतीक ये काला रंग है। श्वेत रंग अपने पास कुछ भी नहीं रखता और सब कुछ फेंक देता है, बिल्कुल धवल उज्जवल शुभ्र निर्मल हो जाता है। आप लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना सात रंगों का, है जो लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, उसमें सात रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जोर से घुमा दो, मूव कर दो उस चक्के को, तो एक ही रंग दिखाई दे पड़ता है। प्रिज्म में से जब प्रकाश प्रवेश करता है तो सात रंगों में डिवाइड हो जाता है, एक ही श्वेत रंग का प्रकाश। रंग नाना प्रकार के हैं, या तो रंग सब खो जावे तो काला रंग आ जाता है, या कि रंग सब खो जावे तो श्वेत रंग आ जाता है। दोनों चीजें हैं काला और श्वेत। काले से यात्रा शुरू हुई है, पहुंचना है श्वेत तक। वैसे तो सब लेशाओं के पार हो जाना ही अलेशावान जो सिद्धत्व है वही है। लेशा से ग्रसित जितने भी जीव हैं वो सब संसारी हैं। हम अपनी कोशिश करें। वो जो उदाहरण आपको हमेशा बताया जाता है वो भी अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति को आम खाना है, आम खाना है तो एक व्यक्ति ये सोचता है कि पूरा पेड़ गिरा लो, देखना पेड़ गिराने का भाव आ जाता अपने आम खाने के लिए। दूसरा वाला थोड़ा कहता है कि नहीं पेड़ मत गिराओ, जो बड़ी बड़ी शाखाओं में आम लगे हैं वो गिरा लो। तीसरा वाला कहता है कि शिखाएं शाखाएं गिराने की भी जरूरत क्या है, जो गुच्छे लगे हैं ना जहां जहां वही तोड़ लो। चौथा वाला कहता देखो गुच्छे में तो कच्चे पके सभी प्रकार के आम लगे हैं भैया, हैं तुम पके पके गुच्छे तोड़ लो, कच्चे वाले जिसमें लगे हैं वो मत तोड़ो। पांचवा वाला कहता है कि गुच्छे क्यों तोड़ रहे हो, जितने अपन को चाहिए है उतने आम ही आम ने तोड़ लो, गुच्छे और खराब कर रहे हो, उसमें पत्ती लगी है वो भी खराब हो जाएंगी, तो गुच्छे मत तोड़ो आम तोड़ लो। छठवां वाला नीचे खड़ा है शुक्लेशा वाला, कहता भैया तोड़ने ओढ़ने वाली बात काय को करते हो, जो गिरेगा थोड़ी देर रुको, जो आम नीचे टपक के गिर जाएगा वो हमारा, वही हम ले लेंगे। कितना परिणामों में परिवर्तन है, एक गिरे हुए आम को लेने के लिए तैयार है और एक आम के पीछे पूरा पेड़ गिराने के लिए तैयार है। बस कृष्ण लेशा में हम अधिक समय रहते हैं, शुभ्रता में बहुत थोड़ी देर। एक प्रैक्टिकल किया गया है अभी, लेकिन लाइट जलती है, क्षण भर के लिए भाव दशा बदल जाती है, क्षण भर के लिए लेशा परिवर्तित हो जाती है। कितना भी डांट रहा हो व्यक्ति और जैसे ही लाइट जली अपने भगवान का स्मरण उसके अंदर तुरंत आ जाता है, लेशा उसी क्षण बदल जाती है। ये लेशा को बदलने के तरीके हैं, मंदिर आते समय जो भाव हैं उससे लेशा बनती है, अच्छे काम करने के जो भाव उठते हैं उससे लेशा बनती है, और लेशा जैसे ही बदलती है वैसे ही कर्मों के बंध में भी परिवर्तन आ जाता है। आयु कर्म लेशा के मध्यम परिणामों से ही बंधता है, तीव्र परिणाम लेशा के हों या कि मध्यम जघन परिणाम हो आयु बंध नहीं होता, मध्यम परिणामों के द्वारा ही आयु बंध होता। किस समय हमारी लेशा के मध्यम परिणाम होंगे और किस समय आयु बंध हो जाए।